पेज नंबर 21 21 से। तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं। पहला अमल जिस पर फ़रिश्तों के नज़ूल की बात है, और वो क्या है? वो अमाल के जिनकी अदायगी पर फरिश्ते उतरें। पहली चीज़, बावजू सोने वाले के लिए फ़रिश्ते का नज़ूल, यानी जो वज़ू की हालत में सोता है अल्लाह ताला उसके लिए फ़रिश्तों को कैसे रखता है, आइए पढ़ते हैं। जिन खुश नसीब लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, इनमें से एक किस्म इन लोगों की है जो तहारत की हालत में सोते हैं। कौन सी? पाकी की हालत। कैसी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये रात को सोने के लिए जब बिस्तरों पर आते हैं तो बावजू होते हैं। अल्लाह ताला इनके वज़ू के सबब इनके लिए फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो इनके साथ रात बसर करता है। वो जब भी रात को करवट बदलते हैं तो मुकर्रर करदा फरिश्ता इनके लिए मगफरत की दुआ करता है। यानी आप तो रात को पता नहीं 20 दफ़ा करवट लें कि 40 दफ़ा लें, फरिश्ते को पता है कि हर करवट पे उसने आपके लिए दुआ करनी है। अब ये बात कह दी गई, कोई भी कह दे नहीं, इंशाल्लाह आप इस जगह पे जब भी आएंगे, जो बात आपको कोई वजीफ़ा, कोई बात, कोई अमल करने को, कोई पढ़ने को, कोई जिक्र अज़कार दिया जाएगा, साथ उसकी दलील होगी। अब ये बात कोई भी कह दे तो क्या उसको हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हम क्यों मानेंगे? क्योंकि इसकी दलील है। दलील क्या है हदीस में, आइए देखते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, अब चूँकि हदीस के अल्फाज हैं ना, तो हदीस तो अरबी में ही होती है, हम तर्जमे में पढ़ तो लेते हैं मफहूम समझने के लिए। और एक ऐसी ख़ूबी है जो मैं आपको बताऊं, फिर आप सब ज़रूर साथ मेरे पढ़ेंगे, और वो क्या है कि हदीस पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने दुआ दी हुई है, नदरल्लाहुल मरा, अल्लाह उस बंदे का चेहरा तरोताज़ा रखे, फ्रेश लुकिंग। चेहरे की खूबसूरती की भी बात है, और वैसे भी देखिए आप इन अरबी के अल्फाज को देखिए, ये नबी सल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं। सिर्फ शऊर बेदार करने को कहूँ कि रात को कोई एक डायलॉग बोलता है और मन चले लोग दिन में उसका जुमला सारे शहर में फिरा रहे होते हैं, कोई एक गाने का बोल हो या कोई एक फिल्म का कोई डायलॉग हो, तो वो तो करें, उस पर तो कोई अजर नहीं है, लेकिन नबी सल्लम की ज़ुबान के एक एक लफ्ज़ को अदा करना ये मोहब्बत की बात है। तो मैं एक एक लफ्ज़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। तो हिरू हाज़िहिल अज़सादा तहरकुमुल्लाह फ़इन्नहु लैसा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन इल्ला बाता माहु फ़ी शआरिही मलकुन ला यन्कलिबु सा'अतन من الليل इल्ला क़ाला। अब ये जो आगे दुआ के लफ्ज़ है ना, ये फरिश्ता करता है। क्या? अल्लाहुम्मग़फिर लियाबदीका फ़इन्नहु बाता ताहिरन। अब इसका तर्जमा देखते हैं, हदीस का हवाला नीचे लिखा हुआ है। नासिरुद्दीन अल्बानी ने इसको हसन करार दिया है, जामिया सगीर में 3936 नंबर की रिवायत है। इसके अंदर क्या कहा गया, आप इसका ज़रा सा हम तर्जमा पढ़ें। फरमाया, आप साथ साथ हाईलाइटर रखेंगे ना, तो जो चीज़ अलग से ज़रा हाईलाइटेड होती है उसको अगर आप अच्छे तरीके से लेंगे, हाईलाइट कर लिया करें, इस पर छोटे छोटे अपने स्टिकी नोट्स लिख लेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकिजगी अता फरमाए। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है। जब भी वो शख्स रात के किसी वक्त करवट बदलता है तो वो फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को माफ़ फरमा, यकीनन वो बावजू सोया था। आप देखिए कि आप महसूस करें इसको, रात का सन्नाटा है, सब घर वाले सो रहे हैं, उस वक़्त तो कोई आपकी माँ भी नहीं जाग रही होगी जो आपके लिए दुआएं करें, आपसे मोहब्बत करने वाले बच्चे भी आपके लिए दुआएं नहीं कर रहे, इमाम काबा भी सो गए होंगे जो सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन फरिश्ता मुकर्रर कर दिया गया जो आपके लिए दुआएं करता है। और आप ज़रा इस जुमले को महसूस तो करें, अपने बंदे को माफ़ फरमा। आप ज़रा अपना नाम तो लिखे बंदा, अपनी इस बंदी, यानी अपना नाम लिखे, मैं अपना बोल दूँ, फरिश्ता कह रहा है अल्लाह इफ़्फ़त को माफ़ फरमा। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी सआदत है, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा खौफ बंदे को अपने गुनाहों से आता है। और हम मरते जाते आदतन भी कभी कभी लोगों से कहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, यानी मान ही रहे वैसे दुआ में आप याद रखिएगा। आप हमें कोई नहीं याद, लेकिन हम आप हमें याद रखें। कोई रख भी ले, कितना को कोई याद रखेगा? और पता नहीं उसके और रब के बीच में कितने हलल हैं, कितने बैरियर हैं जो उसकी दुआओं को कबूल होने से रोक रहे हैं। ये एक अलग मौजू है, इसको छोड़ दें अभी। फरिश्ते पाक नाफरमानी नहीं करते, हराम नहीं खाते। फरिश्तों के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं कि जिनकी वजह से उनकी दुआएं रद्द हों। वो आपके लिए कह रहे हैं तो आप बताइए कि उनकी दुआ कबूल होगी कि नहीं। और अमल कितना को बड़ा जी, कि पहाड़ ढाना है। हर मुहज्जब इंसान रात को सोने से पहले वॉशरूम यूज़ करके ब्रश करता है, कपड़े चेंज करता है, अपने आप को फ्रेश अप करके बेड पर लेके जाता है ना। क्या हम दिन के गंदे मंदे पाँव लेकर अपने बेड्स पर जाते हैं? क्या हम ऐसे ही मुँह में खाने की बू है और हम चले जाएँगे बेड पर? मुंह भी कई धोते हैं, अगर मुंह पे कुछ लगाया हुआ है तो क्लींजर और टोनर और न जाने क्या कुछ करके मुंह को साफ़ करते हैं ना। कितने कम लोग हैं, चले कुछ तो होंगे जो शावर लेके भी सोते हैं। क्या इसमें इतना सा वजू मुश्किल है? लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अभी से बता दूं, इसको शैतान इतना मुश्किल कर देगा। मुँह धुला लेते, पाँव नहीं धोने देता। लोग कहते हैं पाँव ना धोने होते तो वज़ू बड़ा आसान था। पाँव धोएंगे तो आपके पाँव भी साफ़ हैं, आपकी बेडशीट्स गंदी नहीं होंगी, हर वक्त आपके घर में लॉन्ड्री के ढेर नहीं लगे होंगे, तो बहरहाल आदत बनाएंगे। अभी और फ़ायदे सुनिए, फिर इस पर हम इकट्ठा अमल की बातें लेंगे। इसके अलावा जब ऐसा शख्स बेदार होता है तो तब भी नाजिल होने वाला फ़रिश्ता इसके लिए मग़फ़रत की दुआ करता है। इसकी दलील अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस से है। पहला क्या था, रात को करवट के दौरान उसकी साइड्स को चेंज करने के दौरान। अब क्या है, जब वो बंदा सुबह उठता है तो क्या उसके लिए होगा? नबी सल्लम ने फरमाया, मन बाता ताहिरन बाता फी शियारिही मलकुन फलम यस्तैकिस इल्ला कालल मलक अल्लाहुम्मग़फिर लियाबदीका फुलानिन फइन्नहु बाता ताहिरन। जो शख्स बावजू सोए तो इसके हमराह एक फरिश्ता होता है। जब भी वो बेदार होता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह अपने फुलां बंदे को बख्श दे। यकीनन वो हालत तहारत में सोया था। पहले ने करवट में दुआ की, दूसरे ने आपके सुबह उठते ही आपको दुआ दे दी। बावजू सोने का एक और फ़ायदा भी ले लेते हैं। हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोहराइएगा, मामिन मुस्लिमिन यबीतु अला ज़िक्रिन ताहिरन फयतअरु मिनल लैली फयसलुल्लाह खैरम मिनद दुनिया वल आखिरती इल्ला अताहु इयाह। जिक्र और अज़कार करके बावजू सोने वाला मुसलमान रात को बेदार होने पर दुनिया और आखरत की जो भलाई अल्लाह ताला से तलब करता है तो वो भलाई अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। पहली बात में क्या था कि करवट पर फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, दूसरी रिवायत में था कि जब आप उठते हैं तो करते हैं, तीसरी में कि रात को आप ख़ुद जो मांगते हैं, और आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए या जो भी आपके साथ सोता है, हम रात को भी बोलते हैं, और जो दिन में करते हैं ना हम वही बोलते हैं। बस सिर्फ आपको अपने ही बोलने से आपकी आँख नहीं खुल जाती, करवट बदलते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ततजाफा जुनूब अनिल मदाजी पढ़ चुके हैं सूरज सजदा में। तो रात को जो भी दुआ करें, और आप देखिए कि हम बिस्तर पे लेट के अपने से भी तो बातें कर रहे होते हैं ना, कभी कोई याद आ गया उसकी दुआ कर दी, माँ बाप पे ख्याल आ गया उनके लिए कह दिया, भाई के लिए आ गया, बहन के लिए करते हैं ना, तो ये अल्लाह की तरफ से हमारी उन दुआओं की कबूलियत के लिए एक और खूबसूरत चीज़ बन जाती है कि अल्लाह ताला हमें बावजूद सोने की वजह से उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि सवाल करने पर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, नज़ूले मलाइका के साथ चाहत भी पूरी होगी। हम चाहते हैं ना हमारी चाहतें पूरी हों, विशेस हमारी ख्वाहिशात पूरी हों। नीस नाजिल होने वाला फ़रिश्ता इसके लिए अजीम सआदत भी है। तहारत की हालत में सोने वाला अगर मरेगा तो फितरत पर मरेगा, और अगर जिएगा तो खैर पर जिएगा। फितरत पर मरने से क्या मुराद है? अभी शायद आप में से कुछ को मुश्किल लगे ये बात, बस इतना कह दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे मरेगा, तौहीद पे मरेगा, मुसलमान होके मरेगा। और अगर ज़िंदा होगा, खैर पे आएगा, तो खैर के भी दो मानी कुरान से हमें पता चलते हैं, क्या है, भलाई पे اور اس کے ساتھ ان الانسان لحب الخیر لشدید، یعنی مال ملے گا، بھلائیاں ملیں گی، دنیا کے بھی بینیفٹس ملیں گے اس کو. پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ کو ہم نے یہاں یاد کروانی ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت برا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو وضو کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور کہہ، پہلے میرے ساتھ دہرائیں گے آپ بھی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت، دوسری طرح بھی پڑھ لیجیے، وفوضت امری الیک ولجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آپ ذرا اس کا اردو ترجمہ دیکھیں، اور میں اس دعا کو پڑھنے کے بعد واقعی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہوں، اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. یا اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے تابع کیا. نفس کیا کہتے ہیں بھلا ہمیں؟ تیرویں پارے کی پہلی آیت پڑھ چکے ہیں آپ بھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس ہمیشہ بندے کو برائی کا حکم دیتا ہے، اسی کو نفس امارہ بھی کہا. آج ہم اپنے بچوں کے آگے بعض دفعہ اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا نفس ان کو کچھ ایسے کام کرنے پہ مائل کرتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ کریں، لیکن وہ ہماری نہیں سنتے. اسی طرح شوہر چاہتے ہیں کہ بیویاں فلاں کام نہ کریں، پر وہ اپنے نفسانی خواہشات میں لگ جاتی ہیں. اسی طرح بیویاں چاہتی ہیں ان کے شوہر فلاں کام نہ کریں، وہ چیز نہ دیکھیں، وہ نہ سنیں، ادھر نہ جائیں، لیکن ان کا نفس ان کو مجبور کرتا ہے. اور بعض دفعہ کیا سچ بتائیے، آپ اپنے ہاتھوں خود نہیں مجبور ہوتے؟ کیا آپ نے آج تک کی زندگی میں کم از کم 10 سے 15 دفعہ یہ نیت نہیں کی کہ میں نے آج کے بعد غیبت نہیں کرنی؟ پھر کیوں ہوتی ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو جب میں اور آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، اسی طرح ہم سب کے لوپ ہولز ہوتے ہیں، شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے، بار بار ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اس چیز سے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے. یہ جو ہماری بری عادت ہے نا، وہ بھی نفس ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں آپ، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے آگے جھکا دیا. کیا مطلب؟ میرے اس نفس کے بت کو توڑ، مجھے انا سے نکال، مجھے اپنا بندہ بنا. اتنے غیر محسوس طریقے سے نفس اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے کہ وہی کیفیت آ جائے اللہ کرے حضرت ابراہیم کی، جو اللہ نے کہہ دی، اس قال لہ ربہ، بولیے، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. دیکھیے وہ لفظ اور یہ اللہمہ کے بعد والا لفظ ایک ہی ہے نا، اسلمت نفسی. آپ دوبارہ اس لفظ پہ نظر رکھیں اور میرے منہ سے وہ آیت کا حصہ سنیں، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت. ابراہیم نے جو جملہ بولا اور کر کے دکھایا، آپ وہ دعا کر رہے ہیں، اور اپنے لیے بھی یہاں دعا کریں کہ اللہ میرے نفس کو اس طرح اپنے آگے مسلمان کر دے، جھکا دے، جیسے ابراہیم جھک گئے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ اپریسیشن مانگی، نہ ایفس اینڈ بٹس، چل پڑے، کود پڑے. اور سورہ صافات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں دونوں باپ بیٹوں کے لیے، فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، پھر ہم نے ان کو بچا لیا. تو سچی بتاؤں، بات ساری اتنی ہے، یہ نفس ہے جو نہیں ابھی تک مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے نا کہ من اپنا پرانا پاپی، برسوں میں نمازی نہ بن سکا. مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی ہرائے. یہ من پاپی ہے، پاپی کہتے ہیں گناہگار کو، پاپ. ہم نمازی نہیں بنتے، نہ مسجدیں بنوا دیتے ہیں. تو یہ اسلام اسلم تو، اب آج رات کو جب آپ بستر پہ جائیں تو اس کو پڑھیں گے، اور دیکھ کے پڑھیں بھی، کوئی بات نہیں، بک تو اب ہاتھوں میں آئی گئی ہے نا. آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا یہ کتاب اب آپ کی وہ ہینڈ بک بن جائے گی، کیونکہ اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہم پڑھنے والے ہیں کہ وہ سب وظیفوں کی کتابیں پیچھے ہو جائیں گی، اور اللہ کے نبی کی زبان سے سکھائے ہوئے جملے ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہم اسلمت نفسی الیک، پھر آپ دیکھیے وفوضت امری الیک، اور معاملہ تیرے سپرد کر دیا. کون سا؟ سارے ہی معاملے ہیں. کتنے معاملے میرے آپ کے ساتھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر 50 ایشو ہیں نا، تو آپ اپنے سناریو کو آگے لیتے جائیں، तो आपके पास 500 इश्यूज होंगे। फ़ोन उठाते हुए डर लगता है कि अब किधर से इशू आ गया, पर फवस तो मरे लाइक। लेकिन यकीन करें, ये देखे, ये है मेरा पोटला, अल्लाह मैंने तुझे पकड़ाया, मैं जा रही हूँ सोने, फवस उम्र अल्लाह। है अल्लाह, मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, चाहे दीन का है, चाहे दुनिया का है, चाहे बच्चों का कोई गम है, कोई अल्लाह ने आपके ऊपर मुश्किल डाल दी है, लोगों ने आपको गलत समझा, लोग आपको मिसअंडरस्टूड करें, ये रात को कह के सोएं, वरना फिर ट्रिंकलाइजर्स खानी पड़ती हैं। और आप देखें, इस एक दुआ की वजह से बंदा कितना पुरसकून होता है, घोड़े बेच के सोता है, गाड़ियाँ बेच के सोता है, वो कहता है गए जाते, कहते हो तो कहते रहो। और नबी सल्लम ऐसे ही थे, लोग उनको बातें भी करते थे ना, तो कहते थे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ, ये मुजम्मम पता नहीं कौन है, मुझे तो नहीं पता ये कौन है, मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा। तो ये जो मैं और आप अपने मामले रख कर बिस्तर पे सोते हैं ना, इससे हमारी स्ट्रेच होता है, हमारे शोल्डर खिंच जाते हैं। अगर आप में से किसी को फील होता है ना कि यार वो के कंधे खिंचे हुए हैं और बोझ है और सर बोझल है, तो आप इस दुआ को पढ़ें, अल्लाह फवस उम्र अल्लाह फवस उम्र लाइक। फिर तीसरी चीज़ इस दुआ में, वल जा तो जहरी लाइक, और मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे किया, यानी फवस उम्र लाइक, मामला तुझे दे दिया। थोड़ा सा इसको देखिएगा पीछे से, अल्लाहुम्मा अस्लम तो नफसी लाइक, ए अल्लाह मैंने अपना नफ्स तेरे ताबे किया, वफवस तो उम्री लाइक, मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, वल जा तो जहरी इलाइक, और अपनी पुश्त तेरी तरफ झुका दी। ये जो बीच में चेहरा आता है ना, इसका भी लफ्सी तर्जमा इसमें नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए इसको आप बेशक अंडर दी ब्रैकेट कर दें। तीसरी चीज़, वल जा तो जहरी इलाइक, और अपनी पुश्त तेरी तरफ झुका दी। पुश्त क्या होती है? कमर, बैक, मुराद है कि मैं लेटने लगी हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम लेइंग डाउन। और किस तरह लेट रही हूँ? रग़बत हूँ व रहबतन इलैक, रग़बत और शौक़ के साथ। कैसे? यानी ए अल्लाह मैं बिस्तर पे लेट रही हूँ, रग़बत और शौक़ भी है और डर भी है। किस बात की रग़बत है? तत्तजाफ़ जुनूबहुम अनिल मदाजी यदून रब्बहुम खौफ़ व तमान। ईमान वाले को खौफ होता है कि अल्लाह जहन्नुम में ना डाल दे, और तमा होता है जन्नत का। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह बिस्तर पे इस तरह सो रही हूँ कि खौफ भी आ रहा है कि मर गई तो क्या होगा, कहीं जहन्नम तो नहीं मिलेगी, और जन्नत की उम्मीद भी लगा रही हूँ, और तू मेरे साथ अच्छा मामला करेगा। और साथ ही कह दिया, ला मलजा वला मंजा मिनका, नहीं है कोई पनाहगा और नहीं है कोई निजात का मुकाम। मलजा के वही जगह जो आप पढ़ते ना, लज्जू लाम जीम हमजा इसका रूट होगा, और मंजा लफ्ज़ नून से, नून जीम हमजा, निजात, यानी ना तो कोई पनाह दे सकता है और ना कोई निजात दे सकता है मगर तू ही। करना क्या? इल्ला इलैक, तेरे ही तरफ है। आमन तू भी किताबी का, ईमान ले आई मैं या ले आया मैं तेरी उस किताब पे, अल्लज़ी अनज़लता जो तूने नाजिल की। देखिए सोते वक्त कलमा नहीं पढ़ रहे कि कुरान पे ईमान ला के सो रही हूँ, वह भी नबी ये का, और तेरे इस नबी पर जो अल्लज़ी अरसलता तूने हमारी तरफ भेजा। कितनी प्यारी दुआ है, इससे ज़्यादा सबमिशन और मोहब्बत भरे अल्लाह से इतनी प्यारी बात कौन करेगा। जैसे एक डायलॉग होता है ना, एक मोहब्बत भरा एक नोट होता है, लव स्टोरी, इससे प्यारी क्या होगी कि अल्लाह जी मैं लेटने लगी, अल्लाह जी अब मैं सो रही हूँ, अल्लाह जी अब आप ये, अल्लाह जी अब ये, अल्लाह जी ये। और इस हदीस में तो सिर्फ इतनी बात थी ना, ये बुखारी के अल्फाज हैं किताबो दावात के, और मुस्लिम में भी हैं, लेकिन सही मुस्लिम में एक थोड़ा सा इजाफा भी है, उसको भी देखते हैं। इस दुआ के बाद आपने फरमाया, फ़ाइन मित्ता मिन लैलती का मुत्ता अलल फितरती वइन असबहता असबता खैरन। फरमाया, अगर इस रात तू मर गया तो फितरत पर मरेगा, यानी इस्लाम पर, और अगर तूने सुबह की तो तूने बड़ी खैर को पाया। अब आप देखिए कि एक अमल अभी तक हमने डिस्कस किया, रात को बावजू सोना। ये जो आखिरी हदीस सुनी ना, इसमें आपको एक मज़े की बात ऐड कराऊँ, इसमें नहीं लिखी क्योंकि ये तो इस तनाजर में ना, ये हदीस अल्लाह के नबी बरा बिन आज़िब को सिखा रहे थे ये दुआ। ये बरा जो है ना, इनका पूरा नाम है बरा बिन आज़िब, आइन अलीफ साइन से, गलत नोट्स लें लेकिन लें इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी ने जब उनको ये दुआ सिखाई ना, तो कहा कि बरा ज़रा आप मुझे भी सुनाइए। अच्छा उस्ताद कौन होता है? खुद ही बोले नहीं, वो फिर शागिर्द को कहते हैं रिपीट करें, सुनाइए ज़रा क्या समझे। अच्छा उन्होंने ये दुआ सुनानी शुरू की। अब हमारे तो सामने लिखी हुई, हम तो ऐसे ही पढ़ देंगे, वो तो मेमोरी से पढ़ रहे थे। पूरी दुआ पढ़ते पढ़ते आप ज़रा नज़र डालिएगा, मैं बताऊंगी कहाँ उनसे एक गलती हुई। सब कुछ कहने के बाद आखिरी लाइन देखिएगा, आमन तो भी किताब कल्लज़ी अनज़लता व भी रसूल कल्लज़ी अरसलता, यानी लफ्ज़ नबी को रसूल कह दिया उन्होंने। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे, फ़र्क क्या होता है, इसको भी आप छोड़ दें। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल जो वो नबी भी होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, उन्होंने आपको बताने में क्या कह दिया, रसूल कह दिया। मानी के अतबार से कोई गलत नहीं था, कोई एग्जैजरेशन नहीं थी, अल्लाह के नबी का मुकाम नहीं बढ़ाया, कोई गलूब नहीं किया। लेकिन आपने उनको क्या कहा, बरा ऐसे नहीं कहो, जो लफ्ज़ मैंने तुम्हें सिखाए हैं वही बोलो। वबी नबी ये कल्लज़ी अरसलता, बहुत बड़ी दलील है। किस बात की, कुरान की दुआ याद कर रहे हैं आप, हदीस की दुआ याद कर रहे हैं, जो अल्फाज है ना वही याद करें। हमारे कल्चर में माशाल्लाह वो मर्च मसाला डालते हैं, कमी बेशियाँ, फ्रूट पे भी हम चाट मसाला मिर्चें डाल के खाते हैं। अगर वाकई अंगूर की ज़ुबान होती तो रो ही पड़ता, और वो जो फिर आंसू बहते, वो केला कहता मेरे पे नमक डाला है, वो जो अमरूद है वो कहता मिर्च भी लगी थी, वो कहता खट्टा भी था, वो कड़वा भी था, और वो कहते हैं बड़ी घुल गई है, बड़ी मज़े की होगी, वो रो रहे होते हैं बेचारे, आंसू होते हैं फ्रूट के जो हमारे फ्रूट के अंदर आते हैं। लेकिन बहरहाल हमें आदत है कुछ चीज़ों को बढ़ाने की ना, तो हम कहते हैं ये क्या बात है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये तो कोई बात नहीं है। हम क्या कहते हैं, वक़िना अज़ाबल कब्री, वक़िना अज़ाबल हश्री, वक़िना अज़ाबल। तो ये जो आखिरी तीन लफ्ज़ है ना, ये चाट मसाला है, इसको निकाल दें, बस रुक जाए। उसने कहा कर लो। देखिए नॉर्वे की हुकूमत आपको कोई काम कहे तो करके ही उसमें चार लफ्ज़ बोलते, नहीं मेरा ये भी डाल दें बीच में इस फॉर्म के अंदर दो चार जुमले, तो बड़े फ़ायदे के होंगे। कान से पकड़ के आपको निकाल देंगे ऑफिस में से कि आप जाइए, हमने आपको फॉर्म में चेंजेस के लिए नहीं बुलाया, फॉर्म फिल करने को कहा। बात समझ गए। तो एक अमल आपके मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। कितने लोग हैं इस पर नियत करते हैं कि आज से फ्रॉम टू डे हम बावजू सोएंगे। अब इसमें चंद जहन में सवाल आ सकते हैं, मैं खुद ही जवाब दे दूं, क्योंकि फिर शायद आपके जहन में आए कि नहीं, बावजू तो सोए तो सोते ही तो वजू टूट जाता है। बेसिकली नींद वजू को नहीं तोड़ती, ये एक बड़ी गहरी बात है, लेकिन जिसम से हवा निकलने का डर ज़्यादा होता है नींद की हालत में, इसलिए वजू टूटता है। इसलिए नींद से क्यास कर लिया जाता है कि सोने से वजू टूटता है, तो टूट जाए, कोई अक्ल इस्तेमाल करे। अभी सो जाऊंगी तो भी तो वजू टूटना ही है, तो मैं करती नहीं। नहीं, आपको मुझे जो कह दिया ना उतने काम पर रह जाए, उसके बाद बाकी बातों पर छोड़ दें। फिर दूसरी बात कि पीरियड्स हैं, फिर वजू करें कि ना करें। मैं आपको पूरे यकीन से इस बात का आपको यकीन दिलाऊं, जो काम आप आम दिनों में रूटीन से करते हैं विदाउट पीरियड्स के डेज में अगर आपकी आदत बन गई, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड अल्लाह ताला आपको वैसे ही अजर दे देगा। ये बात भी हदीस से ही पता चलती है कि सेहत के दिनों में इंसान जो काम करता है बीमारी में भी उसको उसका अजर मिलता है। एक वाक्या भी है बहुत मशहूर के, एक शख्स को मस्जिद में कुछ लोग ढूंढ रहे थे, तो लोगों ने कहा वो आज तो नहीं आया, रोज़ ऐसे आता है लेकिन आज तो नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फरिश्ते हैं, अल्लाह ने हमें कहा कि वो इस वक्त मस्जिद में इबादत कर रहा है। कहा नहीं, रोज़ आता है लेकिन आज घर पे है क्योंकि आज आ नहीं पाया। कहा अच्छा, इसीलिए फिर अल्लाह ने हमें कहा कि चूँकि रोज़ आता है तो अगर आज सेहतमंद होता तो आज भी आता। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इसी तरह तहारत को जिस हद तक भी ले लीजिए, वज़ू करना की हाजत है वज़ू कर लीजिए, गुस्ल लेने की हाजत है तो गुस्ल भी कर ले, जो जिस हद तक कर सकता करे। हालांकि नबी सल्लम के ऊपर गुस्ल की कैफियत होती थी और अब सो जाते थे, लेकिन फजर की नमाज से पहले पहले गुस्ल करना लाजिम है, यानी जिसकी वजह से इंसान की फिर कोई इबादत ज़ाया ना हो, ये मतलब है। ठीक है, तो आज चेकलिस्ट में पहली चीज़ बावजू होना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। फिर इसी तरह देखे सूरत मुल्क अगर पढ़ने की आदत है वो पढ़े, वो फिर एक लंबी कहानी चलेगी। मैं इसमें आपको और भी चीज़ें ऐड करा दूं, चले वजू तो करना है कुछ और भी कर लें, पर मुझे इजाज़त नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि फरिश्तों के उतरने की बात। हालांकि आपको पता है सोने के आदाब में रात को सूरत मुल्क पढ़ने की बात है, वो शिफात करेगी लेकिन उसमें फरिश्तों की बात नहीं है। तो एक नेकी करेंगे ना आप, देखेंगे आपका दूसरी को भी दिल करेगा, फिर दूसरी के बाद तीसरी को भी करेगा इंशाअल्लाह ताला।